मनुष्य मनुष्ये क्रियते यत्तु तन्न शक्यम सुरासुरे ब्रह्मपुराण। जो मनुष्य कर सकता है वो देवता भी नहीं कर सकते हैं और दैत्य भी नहीं कर सकते। मनुष्य ये पांच महाव्रतों के आधार से, अरे एक खाली ब्रह्मचर्य का व्रत पाले तो चार वेद पढ़ने वाले का जो फल होता है या तप करने वाले को जो फल होता है, वीर की रक्षा करने वाला उन फल से स्वतः संपन्न हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य पालने में सहायक प्रयोग है वो तुमको सिखाया, उसका कदर करना। इधर उधर के वातावरण में जो समय देते उससे समय बचाकर भी ये प्रयोग जरूर करना। कमजोरी का इलाज कमजोरी का चिंतन छोड़ दे। गांधी जी का शरीर कितना पतला दुबला कमजोर था, लेकिन बुद्धि कमजोर हो शरीर कमजोर हो फिर भी कोई हरकत नहीं, मनोबल से नैया पार हो जाएगी। अब मनोबल आएगा तो इंद्रियों की लोलुपता मिटेगी तो महाराज पतला दुबला कमजोर शरीर भी जोरदार अंग्रेजों को भगाने में सफल हो गया। जिसको कर्म करने की रुचि है वो उसके हृदय में उदारता आ जाए, बिना स्वार्थ के कर्म करे तो वो भगवत सुखाने लगेगा। जिसकी भावना है उसमें आत्मीयता आ जाए भगवान के प्रति, सब में भगवान है, तो उसको भगवत रस सहज में आएगा। जिसकी बुद्धि की विशेषता है वो संयम और स्वाधीनता का आश्रय लेकर आत्म सुख से यहीं ब्रह्म ज्ञान के सुख से संपन्न हो जाएगा। ज्ञान प्रधान व्यक्ति को आत्मा अनात्मा का विचार करके भगवत सुख पा लेना चाहिए। कर्म में रुचि वाले व्यक्ति को उदारता का सद्गुण भर के कर्म संसार की भलाई के लिए करके अपना भगवत सुख पा लेना चाहिए। भावना वाले को आत्मीयता, भगवान में आत्मीयता और सभी जनों में भगवत सत्ता है, इसका चिंतन करके संसार से अनुरक्ति अहंता को बदल देता है, मैं भगवान का हूं भगवान मेरा है। भक्त अपनी अहंता को भगवान का मैं भगवान का भगवान मेरे, और कर्मी अहंता को शुद्ध करता है अनासक्ति के द्वारा, और ज्ञानी अहंता को मिटा देता है कि अहंता कल्पना मात्र है, इंद्रियों की मन की भीड़ की बेवकूफी है, अहम बहुम जैसे कोई चीज ही नहीं है। आंख ने देखा बेवकूफी करता है, मैंने देखा, मन ने सोचा बोले मैंने सोचा, बुद्धि ने निर्णय किया बोले मैंने निर्णय किया, ये तो सब करणों में हो रहा है। तो ये अहम कल्पोल कल्पित है, जैसे प्याज की परतों से परतें हटा दो तो कुछ नहीं, केले की जड़ को केले के पेड़ की परतें हटा दो तो कुछ नहीं ठोस, ऐसे ही अहम जैसी ठोस कोई चीज ही नहीं, ऐसा समझ के व्यापक ब्रह्म के साथ एक हो जाता है ज्ञान मार्गी। कर्म मार्गी संसार की सेवा करके संसार में व्यापक ईश्वर के साथ अपना औदार्य भरा व्यवहार भाव करके भगवत सत्ता से एकाकार होना है। भक्ति वाला भगवत भाव से एकाकार, चाहे भक्ति का रस लो चाहे औदार्य का रस लो चाहे अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान का रस लो, लेकिन रस ये संसार से के रसों से बचने के लिए भगवत रस जरूरी है। अगर भगवत रस के तरफ नहीं झुकोगे तो संसार का रस काम में लोभ में मोह में नाक की सुगंध में जीभ के चटोरेपन में गिरा देगा। जिसको जो चीज की आसक्ति ज्यादा हो उस चीज को बांट के खाना शुरू करे, इंद्रियों को ज्यादा पोषो मत, गाने बजाने पिक्चर के सुनने की आदत हो तो भगवत कीर्तन सुनो, चटोरेपन की आदत हो तो भगवान को भोग लगाकर बांट कर फिर खाओ, काम विकार की ज्यादा आदत हो तो अभी जो आसन बताया वो करो, योनि मुद्रा को सकोड़ के बैठे हैं अभी श्वास बाहर निकालो, मैं कराता हूं, श्वास बाहर निकालो और योनि को सकोड़ के पेट को अंदर करके जितनी देर हो सकता है श्वास बाहर रखा, मन में ओ मरियमाय नमः जप सको तो अच्छा है, कैसा भी काम ही होगा उसका काम विकार शांत होने लगेगा। पांच विकारों में पहले नाम आता है काम का, बड़ा खतरनाक है, बड़े बड़ों को गिरा देता है। श्वास बाहर निकाले, पेट अंदर रखे, योनि को सकोड़ के ऊपर की तरफ कर दे। जितनी देर श्वास बाहर रहे, पेट अंदर दबा रहे, योनि सकड़ी रहे, उतनी देर ओ मरियमाय नमः हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहो। ऐसा 10 बार रोज करो, कितना भी कामी व्यक्ति होगा काम राम में बदलेगा। बड़े में बड़ा खतरा तो यही है काम विकार। स्त्रियों को पुरुषों को गिराने वाला महावैरी महाशनु ये काम और क्रोध है। सर्वांगासन करके श्वास बाहर निकाला, योनि मुद्रा के धक्के मारे, फिर बैठ के भी ऐसा करा, 10-5 दिन में कितना भी कामी आदमी होगा फायदा हो जाएगा। कमर सीधी रखें तो अच्छा रहेगा, गर्दन भी सीधी रखें। कुछ लोग ध्यान में गर्दन ऐसी कर लेते तो मन और प्राण शक्ति यही जाम हो जाएगी, सहस्त्र सार का विकास नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे करके बैठते, इससे थोड़ी स्मृति में तो मदद मिलेगी लेकिन साधना ही और प्राण और मन की चेतना ही रुक जाएगी। जिनको याद शक्ति की कमी हो वे लोग दिन में 10-5 मिनट मेरी स्मृति जागृत हो, ओम एम नमः मन में ओम एम नमः करके तो स्मृति शक्ति बढ़ेगी। बच्चों को भी सिखाओ तो बच्चों को भी पढ़ने में कम मेहनत पड़ेगी और अच्छे मार्क से उत्तीर्ण होंगे। बच्चों के लिए तो जो मत्था टेक कार्यक्रम है उनको तो जरूर कराओ, उनसे बच्चे धीर गंभीर बुद्धिमान होंगे। जरा जरा बात में जो चिढ़ जाते हैं या कभी नापास होने पर कुछ खा लेते हैं या भाग जाते हैं आत्महत्या करने के लिए या किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, वे सब बच्चों के दोष दूर हो जाएंगे सारस्वती मंत्र और वो प्रयोग मत्था टेक कार्यक्रम। मैं सारस्वती मंत्र देता हूं तो सभी बच्चों को कराता हूं और वे बच्चे बदले हुए माँ बाप को जब मिलते तो माँ बाप मेरे पर बहुत बहुत श्रद्धा करते, मेरे को भगवान मानने लगते। मैं तो कहता हूँ वो भी भगवान है, सभी भगवान है, खाली मैं ही भगवान हूँ ऐसी बात नहीं, भगवान के सिवा कुछ ही नहीं है। लेकिन अभागे विकारों के कारण अपने भगवत तत्व को जानते नहीं। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल, सब भगवत स्वरूप है किन विकारों के न कारण मूर्खों की नाई भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। जरा जरा बात में जो झूठ बोलते हैं वो आज से अपने पर कृपा करें। सत्य समान तप नहीं और झूठ समान पाप नहीं। झूठे व्यक्ति पर विश्वसनीयता नहीं रहती, जो अपनी विश्वसनीयता खो देता है वो समाज में भी गहरी असर नहीं रख सकता। इसीलिए झूठ बोलने से अपने को बचाओ, बड़ा भारी पाप है। लेकिन भाई हम भी फिसल तो जाते हैं, हम भी पूरा सत्य का आचरण नहीं कर पाते, हमारे से भी सावधान रहने पर भी कई बार झूठ हो ही जाता है। शत्रु से बदला लेने की एक बढ़िया से बढ़िया कुंजी है। शत्रु से बदला लेना हो, शत्रु को मिटा देना हो सदा के लिए, तो उसको मारो मत, उसके लिए मुसीबतें मत खड़ी करो, उसको सदा के लिए गायब कर दो धरती से। मारो मत, मर्डर मत करवाओ, मर्डर करवाओगे तब भी वो धरती पे आ जाएगा किसी रूप में, जन्म लेके किसी जन्म में। शत्रु से बढ़िया बदला लेने का एक इलाज है, सुंदर इलाज है, सर्वोत्तम उपाय है कि शत्रु जो तुम्हारे दोष बताता है वो अगर तुम्हारे में दोष है तो उन दोषों को उखाड़ के फेंको। शत्रु पर विजय हो जाएगा और शत्रु के द्वारा मेरे दोष निकालने की तू ही लीला करता है। ऐसा करके भगवान को प्यार करो और शत्रु के अंदर वो मेरा भगवान है, ऐसा करके कभी जाकर उसे माफी मांग लो कि भाई मेरे मन में आपके लिए बुरे विचार आते हैं, आप मुझे माफ करो। वो पानी पानी हो जाएगा। और अत्यंत दुष्ट हो तो फिर नजीक जाना आपके लिए ठीक न लगता हो तो कोई बात नहीं। मन से युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को दुर्योधन नहीं बोलते थे, सूर्योधन बोलते थे। दुर्योधन तो उनसे शत्रुता करना चाहता था लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने शत्रु को जीत लिया था। दुर्योधन भी युधिष्ठिर महाराज की सराहना के बिना नहीं रहता, युधिष्ठिर के लिए आदर हो गया दुर्योधन को, शाकुनी को। हमारा इतना विस्तार देखकर कई लोग बेचारे मन में कुछ गांठ बांध लेते हैं लेकिन उनकी गांठ टिकती नहीं ज्यादा, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ बोलता नहीं और उनके लिए मेरे मन में बुरा बात रख के अपना मन बुरा करूं, नहीं तो काय को मेरे से शत्रुता करे। कोई भले अपने मन में मेरे को कुछ का कुछ मान ले लेकिन मैं तो सबको नारायण रूप मानता हूं, चाहे किसी जाति के हो किसी संप्रदाय का, सब हमारे परमात्मा के स्वरूप, तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। शत्रु को परास्त करने का सुंदर उपाय है, अपने में शत्रु जो बताता है वो अपने में दोष हो तो वो निकालने में हिम्मत करो, और नहीं है तो शत्रु की गहराई में वो ही बैठा है, भगवान उसका मंगल करे, भला करे। मंगल करेगा तो सद्बुद्धि देगा और क्या करेगा। भगवान उसका मंगल करे उसका मतलब ये थोड़ी कि शत्रु आपको आपके ऊपर हावी हो जाए, ऐसा भगवान मंगल नहीं जानते। चलो शत्रु का भी भगवान मंगल करे तो उसका मतलब है उसको सद्बुद्धि आएगी, मंगल के रास्ते जाएगा। सुख आ जाए तो सुख में वियोग का मजा लो कि सुख भी जाने वाला है बेटा, तू कितना रहता है हम जानते हैं, चलो तेरे को बांटेंगे। तो सुख आए तो उसको उसके वियोग का मजा लो, और दुख आए तो उसके वियोग का मजा लो कि दुख तो आया है तो तू जाने वाला है कितना रहेगा। जब सुख को पकड़ रखते तो भी नहीं रहता तो तू कैसे रहेगा, तू तो जाने वाला है, रहने वाला तो मेरा साक्षी आत्मा परमात्मा, क्यों प्रभु तुम ही रहने वाले हो ना, ये दुख आया है तो रहेगा क्या, ये सुख आया नहीं उड़ा रहेगा क्या, नहीं उसको देखने वाला सो मैं जहां से होता है वही, जहां से मैं उठता है वही तू ही रहेगा ना, फिर दुख क्या कर लेगा, सुख क्या दे देगा। आप सुख को और दुख को खिलौना बना लो और उसके बदले में भगवान को पालो, बस इरादा बदल दो और क्या है, सोच बदल दो, नजरिया बदल दो। नजरें बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले, आप खाली नजरिया का रुख बदल दो, वो संसार का किनारे से मोक्ष के किनारे लग जाएगी मति गति। बस नारायण 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 नारायण, चलो फिर से श्वासोश्वास। जीव दांतों के मूल में श्वास अंदर गया शांति, अथवा ओम, बाहर गया तो गिनती, ऐसे करते करते ध्यान में आनंद में डूबते जाओ। चलो आनंद है, प्रभु तेरी जय हो। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, शांत बैठना ये बड़ी तपस्या है, कुछ न करना ये बहुत कुछ करने की अपेक्षा ज्यादा है। भीतर से ऊपर उठते जाने की भावना करो, आप ऊपर उठ रहे हो, योनि को सकोड़ लो, आपकी ऊर्जा जीवनी शक्ति ऊपर को उठ रही है। आप स्वयं ऊपर को उठ रहे हो। हृदय कमल खिलता है, ऊर्जा ऊपर आई, उल्टा सा हृदय कमल था, अष्टदल कमल धीरे धीरे सीधा हो जाएगा, निर्लिप्तता का आनंद रहेगा। आपकी जीवनी शक्ति, ऊर्जा, प्राण चेतना नीचे के केंद्रों से ऊपर को उठती है, धीरे धीरे उठेगी। हृदय कमल खिला, आनंद माधुर्य, ऊर्जा ऊपर को कंठ रूप को आ रही है, जीवनी शक्ति। कंठ रूप की शुद्धि हो रही है, साधन करते कुछ लोग तो बरकत तो आती, लेकिन असाधन करके साधन के प्रभाव को गिरा देते। असाधन छूट जाए तो थोड़ा सा साधन ही बहुत हो जाएगा, बिन जरूरी छोड़ दो तो और जो जरूरी है अपने आप होने लगेगा। जरूरी है शांत होना, जरूरी है सुख दुख का साक्षी होना, जरूरी है सुख का भोक्ता न बनना, दुख का भोक्ता न बनना, उनको उपयोग कर लेना। सुख आए तो बांटो और दुख आए तो उसे अप्रभावित रहकर दृष्टा बनो। जो जरूरी है होने लगेगा। ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगती ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है और उस तरफ दृढ़व्रता होकर चलना कठिन लगता, नहीं तो ईश्वर प्राप्ति कठिन नहीं। सारा नाड़ी तंत्र शुद्ध करने के लिए एक महीना पर्याप्त है, न रोग रहे, न शोक रहे, न चिंता रहे। विधिवत जान ले, नियम से कर। हम लोग फालतू ज्यादा करते, न करने का ज्यादा करते, न सुनने का ज्यादा सुनते, न बोलने का ज्यादा बोलते। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर गया, बोले दिल्ली मेल कितने बजे जाता है, बोला 8 बजे के, जयंती जयंता, बोले 5 बजे। आगरा लोकल कितने बजे जाती है, बोले रात को 11। अच्छा तो कर्णावती बॉम्बे जाने वाली, अहमदाबाद से बॉम्बे कर्णावती, बोले सुबह 5:30। अरे साहब वो शताब्दी भी तो जाती है, बोले शाम को 2:45 बॉम्बे, अहमदाबाद टू बॉम्बे। अच्छा तो तारंगा लोकल कितने बजे जाती है, बोले तुमको कहाँ जाना है, बोले मेरे को पटरी पार करनी है, जरा टाइम सब जान लो। अरे हम बुद्धू अभी पटरी पार कर ले, सब रेलवे का टाइम टेबल भरने की खोपड़ी में क्या जरूरत है, तेरे को जहां जाना है उधर का करना, उसको खाली पटरी पार करना है और सारी गाड़ियों का टाइम पूछ रहा है। ऐसे ही आपको जन्म मरण की देह मैं हूं, वास्तव में देह आप नहीं है, आप विदेही अमर आत्मा है, बस देह की पटरी पार करना है। तो फिर इतना सारा जंजाल क्यों मोल लेते हो, जरा शादी में अच्छा दिखे, जरा इसमें ऐसा दिखे, जरा लोग ये करे, जरा मूंछ ऐसी ही बने, ये ऐसा हो, जरा ये ऐसा हो, काय को झंझट मोल लेते हो। पटरी पार करना है, कर लो बस छुट्टी। एक महिला रेलवे स्टेशन पे गई, झांसी जाने वाली गाड़ी कितने बजे है, बोले तो उसने जवाब दिया, तो बच्ची उसकी छोटी मुन्नी थी, वो पेट पकड़ के हंसी, माई बांकड़े पे बैठी, बोली मम्मी फिर से पूछो। तो फिर से पूछा, भैया जहां से जाने वाली गाड़ी, उसने फिर से बताया, लड़की को खूब हंसी आ रही, दिल्ली से झांसी जाने वाली गाड़ी कितने बजे उठती, ग्वालियर झांसी आगरा होते हुए जो झांसी जाती ना गाड़ी, तो बोले इतने बजे। फिर लड़की ने चौथी बार कहा, पांचवी बार, उसने पांचवी बार बताकर एकदम झुंझलाया। तो लड़की कहती है, भैया अब एक बार तो कह दो। तो दस बजे 17 मिनट कितनी बार कहेंगे। बोले बस इसी कारण मैं बार बार पूछती हूँ भैया, मेरा खून बढ़ रहा है, मजा आ रहा है जरा, 10 बजे 17 मिनट। तो बच्ची तो न 10 याद रखा न 17 याद रखा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना मजा ले लिया। ऐसे आप जगत का कुछ याद न रखो, ये जगत की लीला है, लीला धर के कोई गुरु ढूंढे कोई गुरु ढूंढे, यही मौज है इसकी, मौज मारो, ये ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है, नहीं तुम अपना सार वाल दस बज के 17 मिनट हो गई क्या। मुन्नी ने तो उसका और 17 पकड़ लिया, 10 याद नहीं रखा, लेकिन उसका जिससे उसको मजा आया, बच्चे को, बच्चे बड़े मनोवैज्ञानिक है, उनको जहां सुख और मजा आता है समझने योग्य होता समझ, बाकी का मुंह फेर लेते। ऐसे आप भी मुंह फेर लो, इधर क्या हुआ उधर क्या, आपके काम का उतना कर लो बाकी काम। मन तो राम भजन कर जग मरवा दे, लड़त मरत ताको लड़वा दे तू राम भजन का। सब लोग ऐसा करे आग्रह क्यों करता है, सबकी अपनी अपनी मति है, अपनी अपनी गति है, अपना अपना रुचि है, अपनी अपनी योग्यता है, जितने करते करते, बाकी तो चलता फिर और क्या करना है, तू तो अपने परमात्मा में गोता मार। अगर मैं भी ऐसा होता तो वो बच्ची मेरी भी सत्संग की बड़ी मजा लेती। नारायण नारायण, सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। उदास खिन्न चित्त चिंतित मोहताज लाचार काहे को, जैसे भी मजा आ जाए चल पड़ो बस। पृथ्वी का केंद्र बिंदु है ये उज्जैन। जैसे पूर्व काल में सांदीपनी ऋषि आए और यहां अकाल ग्रस्त लोगों ने उन्हें प्रार्थना की और वे महाकाल की उपासना करके महाकाल को प्रसन्न किए, और महाकाल ने कहा अब उज्जैनी में अकाल नहीं पड़ेगा, तब से उज्जैन के इर्द गिर्द वृष्टि की कुछ न कुछ करुणा कृपा रहती है। ये महापुरुष कई विद्याओं में निपुण थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये विद्याएं पाई थी। मालवा सर्वदेश भूषित मालवेश, सर्वे विज्ञान भूषिता मालवे ही, सर्वे धर्म आश्रिता मालवे ही, सर्व विद्या आश्रिता मालवे ही, सभी देश मालव वासियों से भूषित हैं, क्योंकि सभी देशों में गीता का ज्ञान देने वाला विद्यार्थी और विश्वनीयता भगवान सांदीपनी ऋषि को गुरुपद पे आसीन करके मालवा में रहे थे। मालवियों को ये गर्व प्राप्त है, ये सारा गौरव मालवियों के हिस्से जाता है। सभी देश मालवासियों से भूषित हैं, सभी विज्ञ जन मालवी वासियों से शोभित हैं, सभी धर्म मालवी वासियों से आश्रित हैं, और सभी विद्याएं मालवियों के द्वारा आश्रित हैं। सांदीपनी योग विद्या में, शास्त्र विद्या में और रहस्य विद्या के बड़े अच्छे ज्ञाता थे, और फिर उज्जैन में ये महाकाल आकाशे तारकम लिंगम पाताले तारकेश्वरम, आकाश में तारा रूपी लिंग है और पाताल में तारकेश्वरम, मृत्यु लोक के महाकालम दृष्ट्वा मोक्षम आपनुयात, मृत्यु लोक में उज्जैनी में महाकाल के दर्शन चिंता से मुक्ति और जन्म मरण से मुक्ति देने का भी सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि यहां सत्संग सुलभ हो जाता है। उत्तम व्यवहार और स्वार्थ त्याग, विनय और प्रेम, सत्य और अहम का त्याग, ये पांच सद्गुण जिसमें भी हो वो श्रेष्ठ पुरुष महापुरुष बन जाएगा। ये ऐसे महापुरुष थे सांदीपनि ऋषि, कवि कालिदास जी और दूसरे भी महापुरुष। तो आपके जीवन में तीन बातें की आवश्यकता है, शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आए। और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश जल्दी से जल्दी पाना हो, सरलता से पाना हो, स्वाभाविक पाना हो, तो आप ईश्वर को सचमुच जो आपका है उसको अपना मानिए और उसको स्नेह करिए और उससे प्रेरणा पाइए। ईश्वर को अपना मानकर आप भजन करेंगे तो भजन में बरकत आ जाएगी। आप गृहस्थी बनकर भजन करेंगे ना तो बरकत नहीं आएगी। साधु बनकर भजन करेंगे तो भी बरकत आना मुश्किल है। मालवीय बनकर भजन करेंगे तो भी इतनी बरकत नहीं आएगी। आप सचमुच में ईश्वर के थे, ईश्वर के हो और ईश्वर के ही रहोगे, बाकी सब स्वप्न। आप जहां पहुंचना चाहते हो, जो होना चाहते हो, मैं वही हूं, ऐसा संकल्प करके अगर साधना करते हो तो साधना में चार चांद लग जाएंगे। एक उपाय है कि आप साधन करते करते कहीं उस ऊंचाई को पहुंचो। दूसरा उपाय है कि जिस ऊंचाई को पहुंचना है उसी ऊंचाई पर मैं स्वतः सिद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ऐसा चिंतन करके साधन करोगे तो आप जल्दी पहुंचोगे। दूसरी बात, नकारात्मक विचारों को आप महत्व न दो। बेटी ने, बेटा ने, पड़ोसी ने, किसी ने कुछ गड़बड़ की और उसको याद करके अपना दिल दुखाकर दूसरे को आप सुधार नहीं सकते। और दूसरा, अपना व्यक्तिगत सुख की लालच छोड़ने से आपका सच्चा सुख जागृत हो जाएगा। हम दुखी इसलिए होते हैं कि सुख बाहर से भीतर भरना चाहते हैं, और सुखी तब होंगे कि भीतर का सुख बाहर बांटे। अपने सुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं, जो औरों को खिलाने में जिंदगी है चार दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। आप भक्ति करो तो छोटी भक्ति मत करो, धर्म करो तो छोटा धर्म मत करो, बड़ा धर्म करो। बाबा बड़ा धर्म और छोटा धर्म, बड़ी भक्ति और छोटी भक्ति के? हां भैया, जब आप भक्ति करते हैं और बदले में छोटी संसार की चीजें चाहते हैं तो आपकी भक्ति छोटी हो गई। आप धर्म करते और बदले में संसार की तुच्छ चीजें चाहते तो आपका धर्म छोटा हो गया। जैसे 5 रुपए के हमने 5 रोटी ले ली और खाई तो 5 रुपए छोटे हो गए, मैं भूखा हूं इसलिए, और रोटी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई। ऐसे भगवान और भगवान की भक्ति छोटी हो गई, वस्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई। जब वस्तु महत्वपूर्ण मानते हैं, परिस्थितियां महत्वपूर्ण मानते हैं, तो भक्ति और धर्म आपका छोटा बन जाता है। जब वस्तु और परिस्थितियों को महत्व न देंगे, परिस्थितियां तो आएगी और जाएगी, लेकिन परिस्थितियों का जो दृष्टा असंग परमात्मा है वो मेरा आत्मा है, खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये किस्ती तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय औद्धव को उज्जैनी ब्राह्मण की कथा सुनाकर भागवत में एक ऐसा प्रकाश फैला दिया। औद्धव, उज्जैनी में, जहां आप हम बैठे हैं, उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था। धन धान्य से बड़ा संपन्न था, लेकिन कंजूसी के, कार्पण्य दोष के कारण न आत्मा का सुख न संसार का यश, आखिर उसकी पुण्याई क्षीण होने से उसके मित्र शत्रु हो गए। राज्य ने और अधिकारियों ने उसको घेरे में डाला और उसका धन छीन दिया। कुछ लुटेरों ने लूट लिया और वो वृद्ध ब्राह्मण कहीं का न रहा और कुटुंबी मुख मोड़ने लगे। श्रीमद् भागवत की कथा है, श्री कृष्ण सुना रहे हैं औद्धव को। फिर उस ब्राह्मण ने तनिक विचार किया कि अब क्या करूं। जब आदमी शांत बाहर से ठोकर खाता है और बाहर का तुच्छ वस्तुओं का आश्रय एकाएक चला जाता है तो निराश्रित हो जाता है, तो फिर भगवत आश्रित होने में उसकी सद्बुद्धि जाग जाती है। मैं क्या करूं, कोई चारा नहीं। जो मेरे को खुशामत की नजर से देखते थे वो है हीन नजर से देख रहे, क्या करूं। उसे सतप्रेरणा मिली और उसने संन्यास ले लिया। संन्यास तो ले लिया, लेकिन उसके विरोधी जो कभी दान पुण्य नहीं करता था, कुटुंबियों का पोषण भी करकसर से कंजूसी से करता था, धन जमा किया तो सब ने उसके पतन अवस्था के कारण सब ने कसर निकालना चाहा कि आप देखो धंधा कर लिया, कमाई का दूसरा जरिया खोज लिया, साधु के कपड़े पहन लिए, ऐसा है वैसा है, आराम को रहे, मुफतिया है। वो जब बोलते तो वो सत्संग के द्वारा सोचता था कि ये सत्संग में हमने सुना है कि कोई कटु शब्द बोलता है तो ये मुझे बोलता है, ये बेवकूफी मत करो, मेरे दोषों को बोलता है, तो इस शरीर को बोलता है, मैं उसको देखने वाला परमात्मा का अविभाज्य अंग। इस प्रकार ब्राह्मण ने सत्संग का आश्रय लिया, घर वालों से लताड़े गए, समाज से लताड़े गए, राज्य सत्तार ऑफिसरों से लताड़े गए, चारों तरफ दुख होने के बाद भी सत्संग ने उसे निर्दुख बना दिया। वो सत्संग की वार्ता से अपने चित्त को निर्दुख रखता। औधव, यहां तक कि कभी कभार वो ब्राह्मण भिक्षा लेकर सन्यासी दंडी सन्यासी शिप्रा तट एकांत में जाकर खाने को बैठता तो विरोधी और तमाशबीन लोग जाकर वहां उसको विक्षेप करते। वो जब खाता तो वहां अधोवायु छोड़ते, शरीर से बमबाजी करते, चने की दाल खाके शरीर फटाकड़ा फोड़ता, ऐसे फटाकड़े फोड़ते, अधोवायु छोड़ते। फिर भी वो ब्राह्मण उनके प्रति रोष नहीं करता और अपने चित्त में खिन्नता न लाता, क्योंकि सत्संग को उसने ठीक से हजम कर लिया कि ये सारे मेरे पाप धुल रहे और कर रहे हैं तो शरीर को तकलीफ दे रहे हैं, मुझ आत्मा परमात्मा का तो इसमें कोई संबंध ही नहीं है। ये शरीर पहले मेरे पास नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, तो अभी इसका मान और अपमान ये मेरा नहीं है, ये पंच भौतिक शरीर का है, मेरा तो प्रभु तू ही है और उनके अंदर भी तू ही है, प्रेरणा देकर मेरे पाप नाशिनी विद्या तेरी है प्रभु। इस प्रकार अपने आत्म प्रभु को वो स्नेह करता था। बीच विघ्न और मुसीबतों के बीच भी औधव उस ब्राह्मण सन्यासी ने मुझ परमेश्वर स्वरूप में विश्रांति पाने की कला सीख ली थी सत्संग। धनहीन सत्ताहीन यशहीन विघ्न बाधाओं से घिरे हुए ब्राह्मण ने कभी नकारात्मक विचार नहीं किए, सभी विचारों में सभी परिस्थितियों में सकारात्मक रवैया अपनाने से उसका चित्त मुझ परमेश्वर की चेतना से संपन्न होने लगा। क्या आप कि जीवन में उस ब्राह्मण से ज्यादा तकलीफ है क्या? शबरी के दुख और कष्टों के आगे तुम्हारा दुख कष्ट क्या माना रखता है? मीरा के विरोध और मुसीबतों के आगे तुम्हारा विरोध और मुसीबत क्या माना रखता है? मेरे गुरुदेव को जो कष्ट सहने पड़े और मुसीबतों के बीच से गुजरना पड़ा, तुम्हारा उस तुम्हारे कष्ट उसके आगे क्या माना रखते हैं? और मुझे जहां से कष्टों से विघ्नों से विरोधों से मुसीबतों से गुजरना पड़ा, उसके आगे आपका न विरोध है न उतना कष्ट है, फिर भी हम मुस्कुरा के मददगार के आस से चल पड़े और बहुत कुछ मिल रहा है, तो आप खाली काहे रहित हो, चिंता काहे करित हो। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे। अपने मन को सिखाते रहना, घटे रूप और ज्ञान,
घटे रूप और ज्ञान,
चिंता बड़ी अभागिनी,
चिंता बड़ी अभागिनी,
चिंता चिता समान,
चिंता चिता समान,
तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए,
निश्चिंत होई सोए,
अनहोनी होनी नहीं,
अनहोनी होनी नहीं,
होनी होए सो होए,
होनी होए सो होए।
क्या होगा, हो के क्या होगा, बहुत बहुत तो मर जाएंगे, धंधा नहीं चलेगा, क्या करे, भूखे मरे मर जाएंगे, तो खा के कौन अमर हो गया है? जितना ज्यादा खा के बीमार हुए और मरे, उतना कम खाने वाले जल्दी नहीं मरते। इसलिए चिंता नहीं चिंतन बढ़ाओ। हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिकरे खुदा, खुदा ताला प्रसाद न सर्व कार्यम फते भवेत। औरंगजेब का भाई दारा शिख को जब शांति पाने के लिए इधर उधर आए, सारे शास्त्र कुरान बुरान पढ़ा, जीते जी मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि उपनिषदों पढ़ो, गीता पढ़ो। उपनिषद और गीता पढ़ा और उसको जो शांति और आनंद मिला, आए है मरने के बाद का वायदा नहीं। दिल्ले तस्वीरें हैं यार जब की गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। उपनिषदों के द्वारा वह नजरिया आ गया, वह माधुर्य आ गया। फिर तो उसने कई उपनिषदें लिखी अपने हिंदू धर्म की, उपनिषदों का आश्रय लेकर फारसी संस्कृत और उर्दू का मिश्रण करके उसने कई उपनिषदें लिखी। उन उपनिषदों में से एक इल्लो उपनिषद, और इल्लो उपनिषद का ये श्लोक है, हे च फिकर मत कर्तव्यम, कर्तव्यम जिकरे खुदा, खुदा ताला प्रसादेन सर्व कार्यम पते भवे। तो आप उस भगवान के प्रसाद से अपने को प्रसन्न बनाइए, सुबह उठिए कि आज का दिन मैं भगवत शांति में, भगवत प्रसन्नता में गुजारूंगा, मेरा धर्म, मेरी भक्ति और मेरा पुण्य छोटा नहीं करूंगा, मेरी भक्ति और पुण्य उस ब्राह्मण की नाई बड़ा कर दूंगा, जो तिद भावे सो भली कार, मान होता है तो तेरी लीला है उत्साहित करने के लिए, अपमान होता है तो अहंकार मिटाने की तेरी लीला है, सफलता आती है तो तेरी लीला है, विफलता आती है तो सावधानी की तेरी लीला है, तेरा चित्त भैया भगवान के तरफ नजरिया कर तो तेरे लिए संसार नंदन वन हो जाएगा। लोग ये चाहते कि मेरे शत्रु मिट जाए फिर आराम से भजन करूंगा, मेरे प्रॉब्लम मिट जाए फिर आराम से भजन करूंगा, कभी नहीं मिट सकते। तुम जहां हो भजन के नजरिया पालो, फिर जहां प्रॉब्लम हो शत्रुता हो वहां आप मजे से आनंद से जी सकते। नजरें बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले, आपका नजरिया बदल दो। ओम नमो भगवते वासुदेवा। वासुदेव क्या कहते हैं कि उस उज्जैन नगरी के ब्राह्मण ने सन्यास धर्म का बराबर फायदा लिया, अपने चित्त को विषय विकारों और फरियाद से बचाकर किसी परिस्थिति का आश्रय नहीं, अनाश्रिता कर्म फलम, किसी भी कर्म के फल का आश्रय न लेकर कार्य कर्म करोति या स संन्यासी च योगी च, वह संन्यासी और वह योग के फल को पाता है। उज्जैनी का ब्राह्मण इस नजरिया का आश्रय करके मुक्त आत्मा हो गया। औधव तुम भी उस ब्राह्मण की नाई अपने चित्त को साधो, लालते चित्त बालवत, अपने चित्त को जैसे बच्चे को फुसलाते हैं ऐसे अपने चित्त को फुसलाकर भगवत भाव से, भगवत ज्ञान से, भगवत आनंद से, भगवत रस से संपन्न करना, यही तो मनुष्य जीवन का फल है। फरियाद कब तक करोगे, चिंता कब तक करोगे, जो बीत गया वो देख लिया, जो बीत रहा है वो देख रहे हैं, और जो बीतेगा वो देखा जाएगा। दुख कैसे होता है, बाहर की परिस्थितियां प्रतिकूल होती है कि बाहर के निमित्त से दुख आता है, फिर अंदर में दुखाकार वृत्ति बनती है, फिर हमारी बेवकूफी की मोहर लगती है कि मैं दुखी हूं, दुखी हूं तो दुख गहरा होता है। दुख बाहर का निमित्त से आया है तो दुख आया है तो जाएगा, सुख सदा नहीं रहता तो दुख के बाप की ताकत है सदा रहेगा। दुख आए के तो मैं देखूंगा और मैं दुखी हूं ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगा, सुख आए उसे बांटूंगा, मैं सुखी हूं ऐसा करके मैं खोखला नहीं बनूंगा। आओ जाओ, आपका सड़क के किनारे घर है, फिर कभी बारात आती तो कभी हाय हाय या अल्लाह वाले भी आते, कभी जन्नादा भी जाता है, कभी अच्छी ट्रैफिक भी जाती है, कभी अच्छे लोग भी जाते, तो कभी खूनखार लोग भी पसार होते, क्रिमिनल लोग भी पसार होते, तो क्या करोगे आप, डंडा लेके खड़े हो जाओगे, अच्छे आदमी गुजरे बुरे न गुजरे, शादी बारात वाले गुजरे, रोने पीटने वाले न गुजरे, नहीं सड़क के किनारे तो गुजरेगा। ऐसे तुम्हारे चित्त एक सड़क है, परिस्थितियां आएगी जाएगी, शरीर में भी तंदुरुस्ती बीमारी आएगी जाएगी, मन में भी अच्छा बुरा आएगा। कई लोग बुरा विचार आता है तो बोलते मैं बुरा हूं, मेरे बुरे विचारों के पीछे डंडा लेके पड़ जाते, बुरे विचार और गहरे उठेंगे और गहरे हो जाएंगे। बुरे विचारों से युद्ध मत करो और बुरे विचारों से मिलकर बुरे मत बनो, उनसे उपेक्षा करोगे तो आपकी ऊंचाई जल्दी आ जाएगी। ऐसे अच्छे विचार आए तो अपने में अच्छे विचार मत मानो, ये अच्छे में अच्छे जो भगवान है उसको दैवी संपदा, उस देव की कृपा है, तो देव की स्मृति में अच्छे विचारों का अहंकार न आएगा तो अच्छे विचार के धनी बन जाओगे। अगर अच्छे विचार का अहंकार आया तो अच्छे विचार भी आपके बेकार हो जाएंगे। मैं लंकापति रावण, अच्छे विचार भी लंकेश को ले डूबते हैं, लेकिन ब्राह्मण को बुरी परिस्थितियां भी तार लेती है। ये सत्संग की महिमा है। सत्संग की महिमा क्या बताऊं आपको, कितनी गाऊं, हम कहा गाई सकत है सत्संग की महिमा। कर्मों की गति गहन है, इसलिए अपने द्वारा ऐसे कर्म करो जैसे भगवान की प्रीति जगे। ऐसे ऐसा चिंतन करो कि अपना आत्मा परमात्मा जो अपने साथ पास है उसको जानने की ललक जगे। संसार परिवर्तनशील है, ये पक्का याद रखो। ये परिवर्तन जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का लक्ष्य है शाश्वत, ये याद रखो। ये परिवर्तन से अर्जन क्या करेंगे, क्या लेके जाएंगे, इन तीन बातों का जो स्मरण रखता है उसकी बुद्धि से दोष निकालने में बड़ी मदद मिलती है। आपको अगर प्रभावशाली व्यक्तित्व निखारना है, अपना प्रभाव विकसित करना हो, तो दूसरों के महत्व की स्वीकृति, आनंद प्रसन्नता मैत्री की भावना और अपने पर संयम, कूड़ कपट बेईमानी से अपने पर संयम, विकारों से अपने पर संयम, और जहां आपको पहुंचना है उसी प्रकार के विचार, और दूसरों के लिए हित की भावना और अपना मित व्यय, अपने लिए ज्यादा ऐश नहीं, अपने लिए ज्यादा खर्च न करें, हित और मित और प्रियवाणी। मनोरंजन हो, विनोद हो, लेकिन वो भी संतुलित हो। आत्मा परमात्मा को पाने का अमित उत्साह, बस ये आठ सद्गुण अपने हृदय में भर लो, आपका प्रभाव भी हो जाएगा खूब। आप चले जाएंगे फिर भी खूब लोग आपके नाम की मनोतियां मना लेंगे, जैसे नानक जी है, कबीर जी है, बुद्ध है, महावीर है, ध्रुव है, पहलाज है, शबरी है, मीरा है, और भी कई। ये आठ गुण आ गए तो आपको तो ईश्वर तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पद चिन्हों पर हजारों लोग, लाखों लोग बाद में चलेंगे। वर्तमान में तो आद्य गुरु शंकराचार्य इतने महान पुरुष थे, फिर भी ईर्ष्या वाले, ये वो टोने टोटके वाले, या जिनकी वाहवाही की वासना थी और कुछ देने को नहीं था तो लोग नहीं जाते थे, तो ऐसे लोग भी शंकराचार्य का तो विरोध करते थे, तो क्या हो गया। जिसके जीवन में ये आठ चीजें आ गई, वो तो धन्य हो गया, उसका कुटुंब धन्य हो गया, उससे मिलने वाले भी धनभागी हो जाते। ये आठ सद्गुण आ जाए, ये आठों सद्गुण प्रभाव को उत्पन्न कर देंगे। आपका कितना भी आदमी साधारण हो, तुच्छ हो, ये आठ गुण आ जाए तो बड़ा प्रभावशाली हो जाएगा। राजे महाराजे उसके आगे मत्था टेक के अपना भाग्य बना लेंगे। ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर पड़ी। तो क्या करना है कि एक प्रभाव उत्पादक मानवीय व्यवहार, पशु जैसा व्यवहार नहीं, कपट बेईमानी जैसा व्यवहार नहीं, मनुष्य को शोभा दे ऐसा व्यवहार करे, दूसरों के महत्व को स्वीकार भी करे, दूसरों के अंदर भी गुण है उनका विकास हो अपने द्वारा तो अच्छा है, नहीं तो उनका मंगल चाहे अंदर से। डांटे तो भी मंगल की भावना से। तीसरी बात, आनंदित रहे, प्रसन्न रहे, मित्र भावना से संपन्न रहे। तो आनंदित और प्रसन्न रहने के लिए दोनों नथुनों से श्वास लिया खूब और पेट भर लिया लेटे लेटे, और फिर मुंह से अशांति खिन्नता और रोग के कण निकाल दी, तो निरोगता भी बढ़ेगी और प्रसन्नता भी बढ़ेगी। खाली 10 से 12 बार रोज कर ले सुबह बैठ के करें लेट के करें। आत्मसंयम, जो नहीं खाना चाहिए जो नहीं करना चाहिए बस उससे अपने को बचाएं, तो जो करना चाहिए वो अपने आप होने लगेगा। और अपना उद्देश्य है ईश्वर मुझे अपने आत्मा परमात्मा को पाना है, जिसको पाना सहज है फिर अभागा मन अभागी बुद्धि तू क्यों उधर नहीं चलती, और जिसको पाए बिना दुर्भाग्य का अंत नहीं होता, और जिसको पाने से कोई कमी नहीं रहती तो उसको पा लेना, ऐसा अपने मन को समझाए। ये बना लिया ये बना लिया, जैसे हाथी दल दल में एक बार चला गया जो निकलने की करे त्यों फंसता जाए, जरा वो मिलकत कर लूं, जरा ये कर लूं, जरा वो कर लूं, जरा ये ठीक कर लूं, तो अपने को बेठीक करके तेरा ठीक किया हुआ तो एक झटका आएगा मृत्यु का तो सब बेठीक हो जाएगा। जो छोड़ के मरना है उसके पीछे कब तक मरता रहेगा, और जो कभी नहीं मरता उसका अभाव और उसका अनादर कब तक करेगा। अपने मन को ऐसा समझावे तो पथोन्मुखी विचार हो जाएंगे। फिर हित कर, मित और हित नियंत्रित, अपने व्यक्तिगत के लिए खर्चा और स्वास्थ्य के और लोगों के हित का व्यवहार, और प्रिय वाणी आपके हृदय को उन्नत बना देगी। संतुलित मनोरंजन, मनोरंजन हो लेकिन उस मनोरंजन की लिमिट हो, नियंत्रित हो। आत्म साक्षात्कार के लिए अमिट उत्साह, जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तो अभी क्यों नहीं हो रहा है, कैसे पाऊं प्रभु को, उत्साह से अपने लगा रहे। उपनिषद में एक बहुत ऊंची बात आती है, पतिम पतिनाम परम परस्तात, पतियों का भी वो पति श्वेताक्षर उपनिषद में आता है, वो ईश्वरों का भी ईश्वर है, पतियों का भी पति है, देवों का भी देव है। उसको हम जानते हैं, बोले देवों का देव, ईश्वरों का ईश्वर, पतियों का पति, उसको हम जानते हैं। उपनिषद में ऋषि कहता है, श्वेताक्षर उपनिषद 6 और 7 में आता है, ये ब्रह्म यज्ञ है, बहुत ऊंची बात है। जैसे कोई प्रजापति है, धर्म के व्यवहार की व्यवस्थापकता जिनमें है उसे प्रजापति कहते, जैसे कुल की व्यवस्था जो करता है उसे कुलपति कहते हैं, प्रजापति कुलपति। गृहस्थ धर्म के पति, दक्षिणा आदि, देनी चाहिए ये नहीं देना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, पति संकेत करे कि ये करे, वो कुल गृहस्थ धर्म के पति। संन्यास के पति है यति ऋभु आदि, ऋभु मुनि यति के संन्यास में कैसा होना चाहिए, उसके वो मूर्तिमान्त ऋभु आदि। भक्ति के पति है नारद जी, भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्ति में भाव कैसा होना चाहिए। वैदिक धर्म अनुष्ठान के पति है वशिष्ठ महाराज, लेकिन हम उनको जानते हैं जो पतियों के पति हैं। वैदिक धर्मानुष्ठान के पति वशिष्ठ हैं, भक्ति के पति नारद हैं, यतियों में ऋभुपति हैं, सन्यासियों के यति ऋभु आदिपति हैं, गृहस्थ धर्म के पति, कुलपति, महीपति, इन सब पतियों के पति जो हैं उसको हम जानते हैं। ध्यान देना बहुत ऊंची बात है। ईश्वरों के ईश्वर जो हैं उनको हम जानते हैं, महेश्वरों के जो परमेश्वर हैं उनको हम जानते हैं, गुरुओं के जो गुरु हैं उनको हम जानते हैं, देवों के जो देव हैं उनको हम जानते हैं। ऋषि ने अपना अनुभव कैसा प्रकट कर दिया, ये कुलपति, जनपति, फलानी पति, उन पतियों का जो पति है वो परमात्मा है, चैतन्य है। ऐसे ही ब्रह्मा उत्पत्ति करते, विष्णु पालन करते, शिवजी संहार करते, ये ईश्वर है। लेकिन उन ईश्वरों का जो अंतरात्मा है वो ईश्वरों का ईश्वर महेश्वर है, परमेश्वर है, उसको हम जानते हैं। इंद्र देव है, अर्यमा देव है, बृहस्पति ही देवों के गुरु है, वरुण देव है, अग्नि देव है, लेकिन देवों का जो देव है उसको हम जानते हैं। देवों का देव कौन है? कि अग्नि में जो दाहक तत्व है वो देवों के देव की, जल देव, जल में जो स्वाद सत्ता है वो देवों का देव आत्मदेव की। जैसे एक ही पृथ्वी नींबू में खटास भर रही है, गन्ने में मिठास भर रही है, पपीता के अपने विटामिन्स भर रही है, और केला में अपने और सेव में अपने, तो इस पृथ्वी में सारे फल फूल औषधियों को पुष्ट करने का तत्व है। लेकिन पृथ्वी जिस जहां से ये सब कुछ कर रही उस तत्व को हम जानते हैं, पृथ्वी पति को हम जानते हैं, महीपति को हम जानते हैं, जलपति को हम जानते हैं, अग्निपति को हम जानते हैं, स्वर्गपति को हम जानते हैं, धर्म अनुष्ठान के पति को जानते हैं, और भक्तिपति को भी हम जानते भक्त। और इन पतियों के जो पति हैं वो हमारे मन के पति होकर बैठे हैं, बुद्धि के पति होकर बैठे हैं, विचारों के पति होकर बैठे। बोले मैं तो मर जाऊंगा, तूने अपनी मौत कभी देखी है क्या? दूसरों की मृत्यु देख देख के मानता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन दूसरों की मृत्यु भी तूने नहीं देखी, दूसरों के शरीरों की मृत्यु देखी है, दूसरे भी नहीं मरते। मैं दुखी हूं, तो कितना दुखी है? कि मैं बहुत दुखी हूं। कितने दुख है तेरे? अरे बहुत दुख आए। तो कितने दुख आए? तो कौन से दुख ने तेरे को छीन लिया, ले लिया, दुख आए और चले गए? ऐसा कोई दुख बता जो तुझे लेके चला गया हो। लेके गया कोई दुख तेरे को? किसी दुख ने तेरे को खा लिया क्या, हड़प कर लिया क्या? ऐसे ही सुख भी आए, कौन सा सुख तुझे निकल गया? बोले तो मुझे पता नहीं, तो मैं कुछ जानता नहीं। तू नहीं जानता है, न जानने को भी जान रहा है ना, वही तेरा पतियों का पति है। इतना आसान है, लेकिन बुद्धि सूक्ष्म हो तो टिके, बुद्धि में वो दिव्य ललक झलक हो तो टिके उसमें। बुद्धि उसको देखती नहीं, लेकिन वो बुद्धि को देखता है। मन उसको नहीं पकड़ सकता, लेकिन मन को वो पकड़ता है। शरीर उसे नहीं देख सकता है, लेकिन शरीर उससे दिखता है। दुख उसे नहीं देख सकता है, लेकिन दुख उससे दिखता है। सुख उसे नहीं देख सकता है, लेकिन सुख उससे दिखता है। देवताओं में वरदान की सत्ता उसी की है, और देव भगत में वरदान मांगने की प्रेरणा उसी की सत्ता है। उस पतियों के पति, भक्तों के भक्त और देवों के देव को हम जानते हैं। ये ऋषि ने कितनी कृपा करके अपना अनुभव प्रकट कर लिया कि उसको हम जानते हैं, अर्थात हम जानते तो तुम भी जानो। पलटू हम मरते नहीं साधो करो विचार, हम ही कर्ता के कर्ता हम ही सृजनहार। हम मरते नहीं और ये मन बुद्धि शरीर जो करता है उन कर्ताओं के कर्तार हम हैं, तन के कर्तार हम हैं, मन के कर्तार हम हैं, बुद्धि के कर्तार हम हैं। हम मरते नहीं है, शरीर मरता है, मन की वृत्तियां मरती है, बुद्धि के निर्णय बदलते, अहंकार की परिस्थितियां मरती है, लेकिन हम वही के वही हैं। पलटू हम मरते नहीं साधो करो विचार, हम ही कर्ता के कर्ता हम ही सृजनहार। हम ही सृजनहार है, जिसको ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, निर्दुख बोलते हैं, अगर पूरा गहराई से विचार करो तो वो तुम्हारी ही बात है, वो तुम ही को बोल रहे। जिसको आत्मा परमात्मा कहते हैं वो तुम्हारे को ही तो कहते हैं, लेकिन तुम शरीर को मेहमान के गलती कर लेते हो। डिजो छाजे लाता, सुसो छाजे लाता, जरी जरी गाल में डप डप डप। भय है तो मन में है, मैं उसको देखता हूं, भय को उखाड़ फेंको। चिंता है तो मन में है, चिंता नहीं थी तभी हम थे और चिंता आई तभी हम है और चिंता चली जाएगी तभी हम रहेंगे। नहीं तो फिर कितनी यात्रा कर ले, कितने तीर्थ कर ले, कितने तप कर ले, ये आत्मा परमात्मा उपनिषदों का ज्ञान नहीं मिला गुरु से। भटक मुआ भेदु बिना, उस भेद को रहस्य को जानने वाले गुरु की कृपा के बिना भटकता है, फिर चोरी करके सुखी होगा तो अरे और बदनामी होगा। चोरी के धन से किसी को सुख और इज्जत मिली क्या? कपट पाप है, पाप जिसका पाप उसी का पाप। कपट कपटी को ले डूबता है, पापी पाप को, पाप पापी को ले डूबता है, अहंकार अहंकारी को ले डूबता है, और सत्य और प्रेम, सत्य और प्रेम वाले को अपने मैं बना देता है। अब मर्जी तुम्हारी।